ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच इति वैरोचनैर्वाक्यम् धर्मयुक्तं ससूनृतम् निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनन्देदमब्रवीत्।
बलि महाराज के यज्ञ में भगवान वामन देव उपस्थित है और उनके आगमन से उस यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी ब्राह्मण ऋत्विज और स्वयं यजमान बलि महाराज बहुत प्रसन्न हैं। सब लोग उठकर उनका अभिनंदन किए, स्वागत किए, प्रणाम किए। बलि महाराज अपने शील स्वभाव के अनुरूप उनको उचित आसन दिए, चरण धोए और बड़े शिष्ट शब्दों में स्वागत किए कि आप भले पधारे, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपके आगमन से यह निश्चय हो गया कि यह यज्ञ बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है, हमारे पितर तृप्त हो गए और हमारा कुल पवित्र हो गया। इस प्रकार बलि महाराज अनेक शिष्ट और धर्मयुक्त शब्दों से भगवान का स्वागत किए। बलि महाराज के वाक्य के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं धर्मयुक्तम ससूनृतम इति वैरोचने वाक्यम। वैरोचने बलि महाराज के लिए कहा गया है, यह अपत्यवाचक शब्द है। विरोचन के पुत्र वैरोचने, जैसा विरोचन वैसा बलि। विरोचन भी भगवान के भक्तों के प्रति, खास करके ब्राह्मणों के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति थे, ब्राह्मण भक्त थे। तो जैसे विरोचन ब्राह्मणों की सेवा करते थे, वैसे ही पिता जैसा स्वभाव विरोचन के पुत्र बलि को भी प्राप्त हुआ। इसलिए ब्राह्मण भक्ति के लिए यहाँ विरोचन पुत्र कहा जाता है, बाप के जैसा ही बेटा भी। तो वैरोचने वाक्यम, विरोचन पुत्र बलि के वाक्य धर्मयुक्तम ससूनृतम, धर्म भाव से भरा हुआ था और बड़ा ही मधुर था। निशम्य भगवान प्रीत, उनके वाक्य को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान वामन देव प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किए। प्रति नंदे दम अब्रवीत, बलि महाराज के बातों से भगवान वामन देव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनके स्वागत का अनुमोदन किए। अनुमोदन शब्दों में किए हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनुमोदन करते हुए इदम अब्रवीत इस प्रकार कहा, तब श्री भगवान बोल रहे हैं। भगवान एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर किसी से कुछ मांगना है तो ऐसे धड़ल्ले सीधे मांगने से वो नहीं देगा, उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। तो भगवान सब माने में आदर्श हैं, चाहे वो विद्यार्थी बने, चाहे योद्धा बने, चाहे अध्यक्ष बने, अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं, चाहे भिखमंगा ही क्यों न बने। तो भिखमंगे बनकर भी भगवान जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, गुरु का काम किए हैं। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु, इनका हर कार्य आदर्शमय है, सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान एक आदर्श भिखमंगे का रोल प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री भगवान वाच बचस्तवैत जन देव सोन्नतम कुलोचितम धर्म जुतम जसस्करम जस्य प्रमाणम भृगव सांपराय पिता मह कुल वृद्ध प्रशांत। श्री भगवान कहते हैं कि हे जनदेव, जनदेव माने राजा, जन के मनुष्य समाज के जो देव हैं वे बलि महाराज। तव एतत वचः कुल उचितम धर्मयुतम जसस्करम सुनृतम, आपने जो कुछ भी कहा है वह आपके कुल परंपरा के अनुसार है, धर्मयुक्त है, जस को बढ़ाने वाला है और अत्यंत मधुर है। आपने जो कुछ कहा है वो उचित कहा है। आपके कुल में ऐसे ही आदर्श व्यक्ति होते हैं जो ब्राह्मणों का महात्माओं का स्वागत करते हैं ऐसे वचनों से, तो ये उचित है, आपने उचित बोला है, कुलोचित बोला है, धर्म जुतम धर्म के अनुसार बोला है और जसस कर जस को बढ़ाने वाला है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या जस उसमें है जब अच्छे लोगों को आदर देने लायक लोगों का आदर दिया जाए तो उसकी प्रशंसा की जाती है, अगर वो कुछ अपमान कर दिया तो निंदा किया जाता है। वास्तव में आपका जो व्यवहार है वो जसस्कर है, सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जो आपने व्यवहार किया। सुनृतम, आपने बहुत मधुर शब्दों का प्रयोग किया, बहुत अच्छा लगा सुनने में भी अच्छा लगा। जस संपराये भृगवः प्रमाणम कुल वृद्ध पितामह प्रशांत, भगवान कह रहे हैं कि इसका कारण है, आप ऐसे बोल रहे हैं इसके पीछे कारण है, आपके दो दो महान आदर्श हैं, एक भृगवः प्रमाणम भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी परम प्रमाण है, आपके जीवन के आदर्श हैं, आप शुक्राचार्य जी के चरण चिन्हों पर चलते हैं, और कुल वृद्ध पितामह प्रशांत और परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा को भी आप वैसे ही मानते हैं जैसे शुक्राचार्य के, दो दो आदर्श आपके सामने है तो क्यों नहीं आप ऐसा बोलेंगे, स्वाभाविक है, आप बहुत बड़े गुरु के शिष्य हैं। आपके व्यवहार से आपके आचरण से स्पष्ट हो गया कि आप आदर्श व्यक्ति का अनुगमन करते हैं, व्यक्ति के आचरण से व्यवहार से उसके कंपनी का पता चलता है, किस कंपनी का व्यक्ति है, कैसे लोगों के साथ रहता है। तो निश्चित रूप से आप बड़े लोगों के साथ हैं, आपके गुरु शुक्राचार्य परम प्रमाण हैं, प्रमाण के रूप में शुक्राचार्य जो कुछ भी कहते हैं वो प्रमाणिक बात कहते हैं, तो उनका व्यवहार उनका आचरण उनकी आज्ञा सब कुछ प्रमाणिक है, उन्होंने ठीक ठीक सिखाया है कि ब्राह्मणों का स्वागत कैसे करना चाहिए, इसलिए आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया। आपके व्यवहार से स्पष्ट हो गया कि केवल आप दीक्षा नहीं लिए हैं, गुरु का फॉलो भी किए हैं, शुक्राचार्य के आदर्श प्रमाण पर चले हैं आप, आपका आचरण बतलाता है, और आपके पितामह परम प्रशांत जिनकी कोई भौतिक कामना नहीं केवल भगवान के चरणों में लगे रहते हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज पितामह हैं, आदर्श गुरु हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान यहाँ से प्रारंभ करके 16 श्लोक में अनुमोदन करेंगे, बचस तवई तद इति षोडश भी, 16 श्लोकों में भगवान बोलेंगे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दो गुरु का नाम रख दिए श्री भगवान, दोनों दो जगह के गुरु थे, जस्य तव ऐहिके धर्म भृगवः प्रमाणम, आपके लौकिक धर्म के प्रमाण भृगुवंशी शुक्राचार्य हैं, और संपराय पारलौकिके पितामह प्रहलाद। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के जीवंत उदाहरण हैं। कोई कह सकता है कि वे अपने पौत्र बलि के प्रति आसक्त थे फिर भी आदर्श कैसे बन गए, बलि के इस प्रसंग में प्रहलाद का व्यवहार तो आसक्ति युक्त दिखता है, जब भी प्रहलाद महाराज उपस्थित हैं बलि के पक्ष लेकर बोलते हैं व्यवहार करते हैं। देखिए जब स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए चले तो प्रहलाद महाराज उपस्थित होकर माला दिए आशीर्वाद दिए, तो ये तो आसक्ति है अपने पौत्र के प्रति। प्रभुपाद जी एक प्रश्न उठाए हैं, क्वेश्चन उठाकर उत्तर दे रहे हैं, अगर कोई ऐसा कहे कि वे अपने पौत्र बलि के प्रति आसक्त थे फिर भी आदर्श कैसे बन गए, तो इसके लिए भगवान उत्तर दे रहे हैं कि प्रशांत, प्रहलाद की विशेषता भगवान बतला रहे हैं कि वो प्रशांत हैं, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते, परिस्थितियों से घबराते नहीं, चाहे जो भी कंडीशन उपस्थित हो जाए लेकिन भगवान की भक्ति छोड़े नहीं। जब व्यक्ति किसी कामना से युक्त हो जाता है, चित्त में विभिन्न विषयों की लालसा रहती है, तब अशांति हो जाती है, मन शांत नहीं रहता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। प्रहलाद महाराज निष्काम थे, शांत थे, शांत ही नहीं प्रशांत कह रहे हैं भगवान, प्रकृष्ट रूप से शांत थे, श्रीपद रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक इन भोगों की कामना है तब तक भक्ति के सुख का स्वादन नहीं हो सकता। यह पिशाची की तरह चित्त में छाई रहती है कामना, और भक्ति के सुख का आस्वादन नहीं होता। कामना से मुक्त होना चाहिए। और इसके साथ प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए एक शिक्षा दी जा रही है भगवान के व्यवहार से, कि आवश्यकता से अधिक किसी से नहीं मांगना चाहिए। न हे तस्मिन कुले कश्चिन निसत्व कृपण पुमान प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य जो बदाता द्विजाते। ए तस्मिन कुले कश्चित निसत्व व कृपण पुमान न, क्योंकि आपकी इस वंश परंपरा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो निसत्व हो। निसत्व का मतलब धैर्यहीन हो, जिसके अंदर धैर्य न हो, वा कृपण अथवा कंजूस, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो कंजूस है। पुमान न, कोई ऐसा पुरुष आपके वंश में नहीं हुआ। और यह द्विजाते अदाता प्रतिश्रुत्य प्रत्याख्याता, और ऐसा भी नहीं हुआ जो ब्राह्मण को दान न दिया हो। यहाँ दो शब्द कहते हैं, अदाता और प्रतिश्रुत्य। प्रतिश्रुत्य अदाता, अदाता का अर्थ जो दान न दिए हो, दाता न हो, कोई ऐसा नहीं है आपके वंश में जो अदाता है, दान नहीं देने वाला है। सभी लोग दानी हैं, एक से एक दानी हुए। और प्रतिश्रुत्य का अर्थ है एक बार कह दिया कि दूंगा और बाद में वो नकारता नहीं है। जो संकल्प किया, अनाउंस किया कि इतना दूंगा उतना देता है, ऐसा कोई नहीं हुआ जो न दे। न संत तीर्थे युद्ध चार्थिनार्थिता परांग मुखा जे त्वमनस्विनो नृपा जुष्मत कुले यद सामले न प्रहराद उद्भाति इवो डुपहखे। कहते हैं दो अवसर में मुकरने वाले लोग आपके कुल में नहीं हुए हैं। तीर्थे, तीर्थे का अर्थ है दान के अवसर आने पर, कोई दान लेने वाला आ गया उचित पात्र, तो ऐसे याचक के आने पर अर्थिना अर्थिता, याचक की याचना सुनकर भी नकार दे, अनसुनी कर दे, ऐसा कोई नहीं हुआ। कोई भिखमंगे आकर दरवाजे पर पुकारे कुछ मांगने के लिए, या सामने आकर कुछ कहे और उसके आवाज को सुनकर भी अनसुनी कर दे, ऐसा आपके कुल में कोई नहीं हुआ। और दूसरा युधी, युद्ध के ललकार सुनने के बाद भी कोई निकले न अथवा भाग जाए, ऐसा नहीं हुआ। दो ऐसे अवसर हैं, याचक की याचना सुनकर और शत्रु का ललकार सुनकर। जेतु परांग मुख, मुख मोड़ लेने वाला, चुप रह जाने वाला या प्रतिकार नहीं करने वाला, ऐसा कोई नहीं हुआ आपके कुल में। अमनस्विन नृपा जुस्मत कुले न संति, इस प्रकार के कायर राजा आपके वंश में नहीं हुए, या धैर्यहीन नहीं हुए जो देने से घबरा जाए कि अरे तो मांग दिया मेरा संपत्ति चला जाएगा, मेरा पैसा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। और उसमें भी आपके वंश में तो प्रहलाद जो है चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं। यत प्रहलाद अमलेन जससा उद्भाति यथा खे उडुप। श्री प्रहलाद महाराज तो ऐसे राजा हुए हैं, ऐसे आदर्श हुए हैं जैसे तारों के बीच चंद्रमा, वैसे प्रहलाद आपके कुल परंपरा में अपने निर्मल जस से चमक रहे हैं। अमलेन जससा, इनका जस में किसी प्रकार का कहीं मल नहीं है, कोई दाग नहीं है, बेदाग भक्त है प्रहलाद। और उद्भाति यथा खे उडुप, और आकाश में शोभायमान चंद्रमा की तरह सुशोभित है भक्तों के बीच में, इस तरह भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रहलाद की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता में क्षत्रिय का लक्षण बतलाया गया है। क्षत्रिय न कभी किसी याचक को दान देने से मना करता है, न युद्ध करने से, दोनों आदर्श क्षत्रियों में होता है। जो भी आदर्श राजा हुए हैं उनमें दान वीरता और शूर वीरता दोनों पाया गया है, इसके लिए वे लोग प्रसिद्ध होते हैं, प्रशंसा की जाती है। इस प्रकार प्रहलाद की प्रशंसा सभी भक्तों के बीच में है। यतो जातो हिरण्याक्ष चरण नेक इमाम महिम प्रति वीरम दिग्विजये नाविंदत गदा युध। अब हिरणाक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं कि यतः जातः जिस कुल में उत्पन्न हुए हिरणाक्ष गदा युध एक दिग्विजय इमाम महिम चरण प्रति वीरम न अविंदत। आपके वंश में हिरणाक्ष हुआ, हिरणाक्ष जैसे वीर जब हाथ में अपना गदा उठा लिया और सारी पृथ्वी में संपूर्ण भूमंडल में सभी लोकों में निकल गया अपने जोड़ का वीर खोजने के लिए, लेकिन उसे अपने जोड़ का कोई वीर नहीं मिला। प्रति वीरम न अविंदत, उसके जोड़ का कोई वीर ही नहीं मिला। हिरणाक्ष के हाथ की खुजली गई ही नहीं, घूम घूम कर खोजता था कौन लड़ेगा, सब लोग भाग जाते थे, नहीं 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 हम नहीं आपसे लड़ाई करेंगे हम नहीं। और उसी क्रम में तीसरे स्कंद में वर्णन है कि हिरणाक्ष खोजते हुए अपने प्रति जोड़ के वीर को समुद्र में घुस कर खोजता था, आकाश में, स्वर्गीय लोकों में, पाताल में, सब जगह कोई नहीं उनके जोड़ का वीर था। तब हिरणाक्ष एक बार अपने जोड़ के वीर खोजते हुए चला गया वरुण जी के पास जो जल के अधिष्ठात्री देव हैं। तो वरुण जी के पास जाकर हिरणाक्ष कहने लगा कि मैं सुना हूँ कि आप राष्ट्रीय यज्ञ किए थे। तो हाँ हाँ किया था, तो अब कर लीजिए ना, अब दोबारा कीजिए। तो कहते नहीं, जब जवान था तब किया था, अब मुझ में न लड़ने का उत्साह है न इंद्रियों में उतना बल है। तो कहे कि जब मैं नहीं था तब राष्ट्रीय यज्ञ कर लिए। तब वो वरुण जी के संकेत से वो सोचा क्या करें कि विष्णु चिढ़ जाए। पृथ्वी को चिढ़ाने का जो कार्य किया विष्णु को चिढ़ाने के लिए कि शायद आ जाए, और जब चुरा लिया तब नारद जी बताए कि अब जाकर खोज। तब वहां आया तो भगवान देखिए आगे क्या कहते हैं कि वो प्रतिवीर जब घूमता था तो उसके जोड़ का कोई वीर नहीं था। यम विनिर्जित किच्छेण विष्णु क्षमोधार आगतम नात्मानम जैनम मेने तद वीरजम भूय अनुस्मरण। बामन देव के रूप में खड़े हैं फिर भी हिरणाक्ष के युद्ध का याद कर रहे हैं। यम विनिर्जित किच्छेण, बहुत परिश्रम से, बड़ी कठिनाई से युद्ध में भगवान विष्णु किसी तरह हिरणाक्ष को हरा पाए। उसको जीतने में विष्णु को बहुत परिश्रम पड़ा। आत्मानम जैनम मैंने, जीत तो गए लेकिन आज भी अपने को विजयी नहीं मानते हैं। तद भूरी वीरजम अनुस्मरण, हिरणाक्ष के उस बल का, उस पराक्रम का आज भी याद है, विष्णु को याद है, अपने को नहीं कह रहे हैं लेकिन खुद वही हैं। तो हिरणाक्ष की वीरता की प्रशंसा किए, दान की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वीरता का। दो आदर्श है राजाओं का, सूर वीरता और दान वीरता। निशम्य तद बधम भ्राता हिरण कशपुह पुरा हंतुम भ्राति हणम क्रोधो जगाम निलयम हरे। जब हिरणाक्ष मारा गया तब अपने भाई हिरणाक्ष के बध की समाचार जब हिरण कशपु सुना, तद बधम निशम्य, वो सुना कि विष्णु हमारे भाई को मार दिया है, तो भातृहणम हंतु, अपने भाई के हत्यारे का वध करने के लिए, विष्णु का वध करने के लिए क्रोध, एकदम क्रोधित हो गया हिरणकश्यप। हरे निलयम जगाम, और भगवान के निवास स्थान वैकुंठ में चला गया खोजते हुए। भगवान देखे तमायांतम समालोक्य सूल पाणी कृतांतवत, देखे कि काल की तरह सूल लिया हुआ है जमराज की तरह। समालोक्य, खूब बढ़िया से पहचान लिए कि आ रहा है, मेरे निकट आ रहा है। चिंतया मास कालज्ञो, समय को खूब पहचानते हैं भगवान। माया बिना बर, माया रचने वालों में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु कालज्ञ, काल को पहचान गए, समय को खूब पहचानते हैं। आलोक्य, जब देख लिए कि हिरणकश्यपु आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो कृतांतवत, काल की भांति सब कुछ करे कराए के जो अंत कर देता है उसको कृतांत कहते हैं। सारी योजना, सारी प्लानिंग फेल, उसको कृतांत कहते हैं। कृतांत का मतलब काल, जमराज काल की तरह मेरे निकट आ रहा है। काल से उपमा क्यों दिया गया है, चाहे व्यक्ति कुछ भी करे काल का सामना करना ही पड़ेगा, मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा, वो आ ही जाता है। तो जैसे मृत्यु व्यक्ति को छोड़ता नहीं, वैसे लगता है कि मुझे छोड़ेगा नहीं, आ गया मेरे निकट। भगवान देख लिए, भगवान बामन देव खुद अपने विषय में बोल रहे हैं कि माया रचने वालों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु अब माया रचेंगे, सामने युद्ध नहीं कर पाएंगे हिरण्यकश्यपु से। चिंतया मास, उनको चिंता हो गई अब क्या करें, विचार करने लगे। तो उन्होंने विचार किया, यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृतामिव अतो अहमस्य हृदयम प्रवेक्षामि परागदृश। जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, सभी जीवों के साथ मृत्यु है, सबको समाप्त करती है, वैसे ही मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां मेरा पीछा करेगा। यतो यतो हम तत्र असौ, जहां जहां जाऊंगा तत्र असौ, वहीं वहीं वह मेरा यह मेरा पीछा करेगा जाएगा। अतः अहम, इसलिए मैं अस्य हृदयम प्रवेक्षामि, इसलिए मैं इसके हृदय में घुस जाता हूँ, सूक्ष्म रूप से हृदय में घुस जाऊंगा और ये खोजता रहेगा। क्योंकि पराग दृश्य, ये बहिर्मुख है, अंतर्मुख थोड़े है कि हृदय में देखेगा। अपने माया के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु के हृदय में घुस गए। एवं सनिश्चित्य रिपोः शरीरम अधावतो निर्विवशे सुरेन्द्रः श्वासानिलांतरहित सूक्ष्म देह तत्प्राण रंध्रेण विविघ्न चेतः। एवं सनिश्चित्य, ऐसा निश्चय करके, अधावतः रिपो, जिस समय हिरण्यकश्यपु उन पर झपटने के लिए आया अपने हाथ में त्रिशूल लेकर, ठीक उसी समय विविघ्न चेतः, घबराए हुए मन से, एकदम कांपते हुए भगवान मानो हिरण्यकश्यपु से डर गए, और डर करके शरीरम सूक्ष्म देह, अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म बना लिए, एकदम मच्छर से भी छोटा। और तत्प्राण रंधेण, श्वास अनिल अंतरहित निर्विवश, नासिका से श्वास के माध्यम से भीतर चले गए। सामने आया मारने के लिए, तब तक भगवान इतना छोटा बन गए, इतना छोटा कि उसके सांस के, हवा के माध्यम से उसी के सहारे भीतर चले गए। वो सांस लिया और भगवान अंदर चले आए उसके हृदय। जो सूक्ष्म रूप बना सकते हैं उनको कांपने की क्या जरूरत है। चक्रवर्ती ठाकुर के भावों को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विविघ्न चेता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान हिरण्यकश्यपु से भयभीत हो गए, बल्कि करुणा बस भगवान चिंतित हो गए कि अरे ऐसे पराग दृश्य का, ऐसे बहिर्मुख का उद्धार कैसे किया जाए। भगवान इसके लिए चिंतित हो गए और उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए इसके लिए भगवान चिंतित हो गए। इसका हित कैसे करना चाहिए, ये तो बड़ा बहिर्मुख है, मुझको पहचानता ही नहीं कि मैं भगवान हूँ। उनका ही पार्षद भगवान की जोग माया के प्रभाव से बिल्कुल भूल गया, कोई ड्रामा नहीं कर रहा था, एकदम भूल गया। अरे परिकर लोग, भक्त लोग भूल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है, स्वयं भगवान भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं। भगवान की लीला शक्ति, अंतरंगा शक्ति अद्भुत प्रभाव भगवान पर डालती है कि भगवान भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं, वास्तव में भूल जाते हैं, बनावटी कुछ नहीं करते, सचमुच भूल जाते हैं। माता जसोदा जब छड़ी उठाती है तो एकदम कांपने लगते हैं, थर 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 कांपते हैं। कुंती महारानी कहती है कि गोप्या ददे तोई कृता गसी दाम तावद याते दशासु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि जद विभेति। कुंती महारानी कहती है कि हे श्री कृष्ण, वास्तव में आपकी लीला अद्भुत है, अद्भुत, बड़े बड़े मनुष्यों की भी बुद्धि चकरा जाएगी। जब गोपी जसोदा के प्रति आप अपराध कर दिए थे, उनका मटका फोड़ दिए थे और वो हाथ में छड़ी उठाई और आपको पकड़ ली, तो आपकी दशा जानते हैं क्या हो गया था। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुंती महारानी ऐसी बोल रही है मानो एकदम आंख से देखी हो। तो यह घटना कुंती महारानी वास्तव में देखी थी। तो वसुदेव जी की बहन है, स्वाभाविक नंद बाबा के भी बहन है, तो नंद भवन में कभी कभी जाया करती थी। तो वहां पर जब कृष्ण बालक थे, जसोदा के प्रति ऐसा अपराध कर दिए, तो कुंती महारानी नंद भवन में उपस्थित होकर के उस लीला को देखी थी। सुनकर नहीं कह रही है, चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है देख कर कह रही है कि याते दशा सुकलिनान जन संभ्रमाक्षम, जब जसोदा छड़ी उठाई तो आपकी क्या दशा हो गई थी, आपके आंखों से अजस्र आंसू गिर रहा था और काजल जो आंख का है धूल कर कपोलों पर आ रहा था और हाथों से आप अपने आंखों को मल रहे थे, याते दशाश्व कलिलांजन संभ्रमाक्षम, एकदम थर 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 काप रहे थे, आंसू से काजल धूल रहा था और भयभीत होकर के जसोदा की तरफ देख रहे थे कि कहीं छड़ी न जमा दे। हाथ तो पकड़ ली है, हाथ में छड़ी ली है, एक हाथ से पकड़ ली और एक हाथ में छड़ी ली है, तो वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, भयभीत होकर के आप जसोदा के तरफ देख रहे थे, कांप रहे थे। रुदंतम मुहुर नेत्र जुग्मम मृजंतम कराम भोज जुग्मे न सातंक नेत्रम, दोनों हाथों से दोनों आंखों को मल रहे थे और आतंकित होकर देख रहे थे, भयभीत होकर। रुदंतम मुहुर नेत्र जुग्मम मृजंतम, दोनों हाथ से दोनों आंखों को मल रहे थे और रो रहे थे, मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, ऐसे लंबी लंबी सांस ले रहे थे कि आपके गला की तीन रेखाएं दिख रही थी, थर 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 कांप रहे थे आप। कुंती महारानी कह रहे हैं कि आप भयभीत नेत्रों से जब देख रहे थे माँ जसोदा से, तो क्या ड्रामा था? ड्रामा नहीं था, वास्तव में आप रो रहे थे, वास्तव में भयभीत थे। वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति, वह लीला जब मैं याद करती हूँ तो मेरे मति भ्रमित हो जाती है। क्यों भ्रमित हो जाती है? इसलिए भ्रमित हो जाती है कि जिनके सामने भय भी भयभीत होता है, काल भी जिनके सामने थर 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 कांपता है, वह काल को भी भय उत्पन्न करने वाले जसोदा के छड़ी से कांप रहे थे। वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि जद विभेति, भय भी काल भी जिनसे भयभीत होता है वही आप जसोदा से भयभीत थे। तो इसका कारण यह है कि भगवान अपनी जोग माया से, अपनी लीला शक्ति से ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि भूल जाते हैं हम भगवान हैं। तो जब भगवान की यह स्थिति है तो फिर भक्तों की हो जाए उनके इच्छा से तो क्या आश्चर्य है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु को पता नहीं था कि हम पार्षद हैं, थे लेकिन एकदम पता नहीं था। अब वह एकदम बहिर्मुख, भगवान को कुछ जानता ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का अब कैसे कल्याण हो? सतनिकेतम परिमेश शून्यम अपश्यमान कुपितो ननाद क्षमाम द्याह दिशा खम विवरान समुद्रान विष्णुम विचिन्मन न ददर्श वीर। अब हिरण्यकश्यपु देखा कि अरे वैकुंठ में भी नहीं है, खोज लिया चारों तरफ मिले ही नहीं, तब वहां से चला। वैकुंठ में जब नहीं है तो हो सकता है वो मायावी है, कहीं छिपा होगा, तो बड़े बड़े पहाड़ों की गुफाओं में खोजवाया, मेरे भय से कहीं भाग गया होगा। तो परिमृश्य भली भांति खोजवाया, शून्यम अपश्यमान सब जगह खोजा और कुपित ननाद, देखा कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको क्रोध आ गया, बहुत भयंकर क्रोध, और ननाद सिंह नाद करने लगा, गरजने लगा। बीरा क्षमाम द्याम दिशा खम विवरान समुद्रान विष्णु विचिन्वन न ददर्श। भगवान विष्णु को कहाँ कहाँ खोजा हिरण्यकश्यपु, पृथ्वी पर एक एक कोना, सभी राज्य में, सभी देशों में खोजवा दिया, कहीं नहीं, पृथ्वी में खोज लिया, स्वर्ग में खोजवाया द्याम, स्वर्ग में कहीं भी विष्णु का पता नहीं चला, फिर दिशाओं में, दसों दिशाओं में खोजवाया, आकाश में खोजवाया, सब जगह पूरे ब्रह्मांड में खोज डाला, और विवरान पाताल में खोजवाया, समुद्रान समुद्र के अंदर, जल के अंदर कहीं छिपा हो वहां भी खोजवाया, विष्णु विचिन्मन विष्णु को सब जगह ढूंढा, परंतु न ददर्श कहीं देख नहीं पाया। ढूंढने में क्या है जब भीतर घुस गए हैं तो, अब कहीं भी खोजोगे तो मिलने वाले थोड़े हैं। जब नहीं कहीं मिले तो अपश्चन नीति हो आच, तब जब नहीं देखा तब बोलता है, घोषणा करता है, माया विष्णम मिदम जगत भातृहा में गतो नूनम यतो नावर्तते पुमान। अब निश्चय करके बोलने लगा, माया इदम जगत अनविष्टम, मैं सारे जगत को ढूंढ डाला परंतु वह मिला नहीं। नूनम में भातृहा पुमान अत न आवर्तते, अवश्य ही मेरा भातृ घाती, मेरे भाई को मारने वाला, उस लोक में चला गया है जहां से व्यक्ति लौट नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि मेरे भय से लगता है कि वहां भाग गया जहां से फिर कोई आता नहीं। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मेरे भय से वो आत्महत्या कर लिया।
मर गया अब जीवित नहीं है, जीवित रहता तो नहीं मिलता, मर गया अब नहीं है। यतो नावर्तते पुमान इति मद भयात देव मृत इत्यर्थ। बौद्धानाम मते मरणस्यैव मुक्तिस्त्वं तद एव अस्य मतम। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बौद्धों का मत है कि मृत्यु के बाद ही मुक्ति हो जाती है। बस वस्तुतस्तु यतः पुमान तद भक्तो नावर्तते तत् स्वधीनामैव गत इत्यर्थ। हिरण्यकश्यपु भी इसी प्रकार सोच रहा है। प्रभुपाद जी चक्रवर्ती ठाकुर के टीकाओं का अनुवाद कर रहे हैं। नास्तिक लोग बौद्ध दर्शन के मतानुसार सोचते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। जीव और भगवान दोनों अजन्मा और अव्यय हैं। यतो नावर्तते पुमान, ये जो शब्द है जहाँ जाने के बाद जीव नहीं लौटता, इसको थोड़ा क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद जी। इससे सूचित होता है कि कोई अवश्य ऐसा जगह है जहाँ जाने के बाद व्यक्ति लौटता नहीं। यह वाक्य जो हिरण्यकश्यपु का है, इससे सिद्ध हो रहा है कि कोई ऐसा जगह होना चाहिए, है अवश्य है जहाँ जाने के बाद व्यक्ति नहीं लौटता है। और उस जगह की चर्चा भगवान भगवद गीता में करते हैं कि वो जगह है जहाँ से नहीं लौटते। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। मेरे जन्म कर्म के दिव्य रहस्य को जो व्यक्ति जान जाएगा, वो ऐसे जगह पर जाएगा जहाँ से फिर लौटेगा नहीं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना, मेरे पास आ जाएंगे। वह जगह कहाँ है? मामेति, मेरे पास, वैकुंठ धाम में। वहां जाने के बाद वह नहीं लौटता। और फिर भगवान कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। अपने वैकुंठ धाम के विषय में भगवान कई जगह एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बताते हैं वहां से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। भगवान को भी पता था कि आने वाला युग विज्ञापन का युग आएगा और लोग विज्ञापन पर बहुत भरोसा करेंगे, टीवी अखबार देख देख कर बस उसी के पीछे दौड़ेंगे। तो बहुत पहले भगवान अपने धाम का विज्ञापन करते हैं। वैरानुबंध एतावान मृतो रिह देहिनाम अज्ञान प्रभो मनु अहमानोपबृंहितः। इह देहिनाम वैर अनुबंध अमृतो एतावान। इस लोक में प्राणियों के साथ जो शत्रुता का संबंध है, वह तो देह समाप्ति तक ही है ना। जब तक व्यक्ति जीवित है तभी तक झगड़ा है ना। कोई अपना शत्रु है, जब तक जीवित है तब तक शत्रुता है। अगर वो शत्रु की मृत्यु हो गई तो फिर क्या झगड़ा है? अब सोच रहा है हिरण्यकश्यपु कि अब तो मर गया, झगड़ा खत्म। और इसी विचार से आकर घोषणा किया कि अब विष्णु कहीं नहीं है, मर गया, अब विष्णु का जगह मैं ले लिया हूँ। अब मैं विष्णु हूँ, विष्णु की तरह जो विष्णु के भक्त है सब भजन छोड़े, मेरा भजन कीजिए। मन्यु अज्ञान प्रभव अहमान उपबृंहित। क्रोध का कारण केवल अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। जब आदमी में अहंकार होता है तो अहंकार से अज्ञान और बढ़ता है। तो इस प्रकार वास्तव में हिरण्यकश्यपु विचार कर रहा है कि अब तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसके मन में एकदम दृढ़ता पूर्वक ये विचार आ गया कि अब नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्यतया देखा जाता है कि व्यक्ति का क्रोध जो है शाश्वत नहीं है। किसी कारण से क्रोध उत्पन्न होता है और फिर परिस्थिति बस शांत भी हो जाता है। किसी पर कोई क्रोध करता है तो जीवन भर उसी क्रोध में नहीं रहता है। क्रोध टेम्पररी है और काल परिस्थिति से फिर शांत हो जाता है। लेकिन हिरण्यकश्यपु का क्रोध एकदम अस्थाई है। आमरण भगवान विष्णु के प्रति क्रोध बनाए रखा। वह केवल मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण क्रोधी नहीं था, वो निरंतर शत्रुता बनाकर रखा था। वो भूल ही नहीं पाता था कि विष्णु हमारा शत्रु नहीं है, हमारे भाई का वध किया, हमारे भाई का वध किया, बस इसी को रटता था। अब फिर बलि महाराज के पिताजी का वर्णन करते हैं, विरोचन का। पिता प्रह्लाद पुत्रस्ते तद विद्वान द्विज वत्सलः स्वमायुर द्विज लिंगेभ्यो देवेभ्यो दात सयाचितः। ते पिता प्रह्लाद पुत्र, आपके पिता प्रह्लाद नंदन विरोचन द्विज वत्सलः, बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त थे, बहुत ब्राह्मणों की सेवा करते थे। द्विज लिंगेभ्य देवेभ्य याचितः
सतत विद्वान स्व आयु अदात। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और वे पहचान लिए, जान गए कि ये देवता है, ब्राह्मण नहीं है। लेकिन शत्रु को भी ब्राह्मण वेश में आया जानकर अपमान नहीं कर पाए, ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे दिए। शत्रुता जानकर भी ब्राह्मण वेशधारी शत्रु के प्रति प्रीतिमान रहे। उनका प्रेम ब्राह्मण वत्सल है, वेश ब्राह्मण का है, देवताओं का बस इतना ही काफी है। ब्राह्मण वेश देख करके उनको दे दिए अपनी आयु। वैसे ही अगर कहीं तुमको भी पता लग जाए तो अपने पिता के ही आदर्श पर चलना। आपके बाप जैसे किए हैं वैसा आपको भी करना चाहिए, भगवान का संकेत है। कहीं से अगर पोल पट्टी खुल जाए कि मैं भी देवताओं के पक्ष से इसी तरह आया हूँ, तो आपको भी अपने पिता का फॉलो करना चाहिए। ए नहीं, मुकरना नहीं चाहिए, इसलिए उत्साह बढ़ा रहे हैं। भवान आचारितान धर्मान आस्थितो गृह में धिनी ब्राह्मणई पूर्वजई सुन्नई अन्य चौदाम कीर्ति भी। ब्राह्मणई गृह मेधि भी, जिनका शुक्राचार्य जैसे आदर्श गृहस्थ ब्राह्मण गुरु हैं और आपके पूर्वज प्रहलाद हैं, अन्य उद्दाम कीर्ति भी और दूसरे भी यशस्वी सुरई आचरितान बड़े बड़े वीरों ने जो पालन किया है, कुछ आदर्शों का नाम रख रहे हैं। आदर्श ब्राह्मण गृहस्थ गुरु शुक्राचार्य और प्रहलाद महाराज तथा अन्य इतिहास में बहुत से ऐसे आदर्श कीर्तिमान हैं, कीर्ति भी यशस्वी राजा हुए हैं जिनका आचरण बड़ा यशस्वी है, उनके आदर्श का पालन करेंगे। आप भी किसी से कम नहीं हैं। तस्मात तत्तो महिमिषद बिड़ेहम बरदर सभात। हे दैतेंद्र, इसलिए मुहमांगी वस्तु देने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, मैं जानता हूँ। बरदर सभात, आप जैसे वरदान शिरोमणि से, त्वत अहम आपसे मैं भी कुछ चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? त्वत अहम ईशत महिम, मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी मांगता हूँ। ईशत महिम, थोड़ी पृथ्वी। थोड़ी पृथ्वी कहते हाँ, मम पदानी समितानी तृण पदानी वृणे, मेरे पैर से मेरे डेग से नापी गई तीन डेग भूमि मांगता हूँ, बस से ज्यादा नहीं। मैं आपसे थोड़ी सी भूमि मांगता हूँ, आप कृपा करके दीजिए। मम पदानी, मेरे पैर से, मेरे पैर कहकर भगवान वामन देव मानो दिखा रहे हैं कि देख रहे हो ना मैं कितना छोटा हूँ और कितना कम जमीन मांग रहा हूँ, बस अपने पैर से नापूंगा देखो। तो अपने को बताकर कह रहे हैं कि मैं अपने पैर से नापूंगा, बस तीन डेग भूमि, ज्यादा नहीं, बस तीन डेग जमीन चाहिए मुझको। पदानी त्रीणी दैतेन्द्र, हे दैतेन्द्र, सम्मितानी पदा मम, मुझे नापने दीजिएगा, मैं अपने पैर से नाप लूंगा। मैं आपको कंजूस नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास क्षमता नहीं है देने, आप देने में उदार नहीं है। आप निश्चित रूप से उदार हैं, आपके पास सामर्थ्य भी है, धन भी है और उदारता भी है। बरदर सभात, बरदर सभात का मतलब देने वालों में श्रेष्ठ है, उदार चित वाले हैं, जो मांगा जाएगा वो दे देंगे, मुझको विश्वास है। लेकिन हमको बहुत नहीं चाहिए, तीन डेग भूमि चाहिए बस। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान अपने पैर से तीन डेग भूमि चाह रहे थे। भगवान कहते हैं मेरे पैर से, वे सामान्य बालक का वेश बना रखे थे, वास्तव में तीनों लोक को लेना चाहते थे, लेकिन तीन डेग भूमि कहकर भगवान देखने वालों के लिए मानो ऐसा व्यवहार किए कि बहुत कम मांग रहे हैं, लेकिन उनको भीतर सब कुछ लेना था। और इस रूप में भगवान अपना पराक्रम दिखलाने के लिए ऐसा किए कि छोटा देखने के लिए हूँ लेकिन नापूंगा तब पता चलेगा। पराक्रम दिखलाने के लिए भगवान इस प्रकार लीला कर रहे हैं, ऐसा भगवान ने व्यवहार किया अपने पराक्रम को दिखाने के लिए कि मैं कभी भी किसी भी समय किसी रूप में प्रकट हो सकता हूँ। नान्यत्ते कामय राजन बदान्य जगदीश्वरात नयन प्राप्नोति वही विद्वान यावद अर्थ प्रतिग्रह। अब अपने औचित्य को व्यक्त कर रहे हैं कि देखो जितनी आवश्यकता है उतना ही दान लेना चाहिए। अगर कोई उदार दाता है, देने के लिए तैयार है, तो इसका अर्थ नहीं कि अपना घर भर देना चाहिए। प्रभुपाद जी तो कई जगह उदाहरण देते हैं कि मनुष्यों से पक्षियों का भाव बड़ा श्रेष्ठ है। अगर कहीं बोरा रख दिया जाए गेहूं का, तो कोई पक्षी आएगा तो अपने चोच में थोड़ा सा अनाज लेकर चला जाएगा, और किसी आदमी को बतला दिया जाए वहां बोरा रखा है तो सब ढोकर घर ले जाएगा। एक ट्रक अगर गेहूं कहीं रखा गया हो कई बोरों में, तो ये नहीं विचार करेगा कि दूसरे के काम भी आने वाला है, वो सबको ले जाएगा उठाकर। और कोई पक्षी आएंगे तो बस एक चोंच लिए चले गए। तो ज्यादा यावत अर्थ प्रयोजनम में पक्षी ज्यादा उदार हैं। तो कहते हैं नान्यत्ते कामये राजन, हे राजन बदान्य जगदीश्वरात, निश्चित रूप से आप जगदीश्वर हैं, जगदीश्वर जगत के स्वामी हैं, बदान्यत और उदार भी हैं। अन्यत न कामये, दूसरा कुछ मैं नहीं चाहता, मैं जानता हूं कि आप देंगे, दे सकते हैं। विद्वान वही जावत अर्थ प्रतिग्रह एना न प्राप्नोति, वास्तव में विद्वान पुरुष वह है जो केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करता है, जितनी उसकी जरूरत हो उतना लेता है। एना न प्राप्नोति, इससे उसे प्रतिग्रह जन्य पाप नहीं लगता, बच जाता है। और यदि इस पर विचार नहीं करता और लेता ही जाता है तो उस पर पाप लगता है। यावत अर्थ प्रतिग्रह, इस पर सभी लोग लिखते हैं थोड़ा थोड़ा, यावत अर्थमेव प्रतिग्रहो जस्य सः, आवश्यकता के अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए। ज्यादा धन किसी से लेने पर पाप लगता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आवश्यकता से अधिक धन लेना दंडनीय है, और दंडनीय इसलिए भी है कि ज्यादा धन लेने पर विषय भोग ज्यादा होने लगता है, और सारे क्लेश का कारण है धन का अपव्यय। प्रभुपाद जी कहते हैं धन का जब व्यक्ति दुरुपयोग करने लगता है, जरूरत से ज्यादा धन आने पर तो दुरुपयोग होगा ही, थोड़ा सा भोजन सात्विक सरल भोजन से काम चल सकता है, और पैसा ज्यादा है तो 10-20 रुपए के भोजन से संतोष थोड़े करेगा। पैसा ज्यादा है तो बड़े बड़े होटलों में पैसा खर्च करेगा, अब उसको एक बार खाने में 2-4 हजार खर्च होना चाहिए। पैसा है अब वो 20 रुपया से संतोष नहीं करेगा, अपनी बेइज्जती समझेगा, अपमान समझेगा, 20 रुपया का भोजन खाएंगे हम अरबपति होकर, तो अब उसको अपव्यय करेगा, अधिक खर्च करना चाहेगा, और उससे अपव्यय होता है। और जब अपव्यय होता है तब मांस शराब क्या क्या खाना चाहता है, और बड़े बड़े होटलों में रुकना चाहता है गौरव बुद्धि से कि हम बहुत धनी हैं दिखाने के लिए। तो अपव्यय होता है और अपव्यय से क्लेश बढ़ता है। तो उस वैसे देखा देखी होने के कारण लोग ऐसे धन को संग्रह करते हैं और फिर अपव्यय करते हैं, धन जुटाते हैं, जुटाने में परिश्रम क्लेश और खर्च करने में क्लेश। तो इस प्रकार अपव्यय करने के कारण क्लेश बढ़ जाते हैं, इसलिए जरूरत से ज्यादा धन संग्रह नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी का भी विचार है। तब बलि महाराज कहते हैं अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, तम बालो बालिश्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। अहो ब्राह्मण कुमार, अहो ब्राह्मण दायाद, मानो बलि महाराज कह रहे हैं कि वास्तव में तुम ब्राह्मण के पुत्र हो। ब्राह्मणों को धन से कहां भेंट हुआ है, धन तो राजाओं के पास होता है ना, धन की कीमत समझते हैं, वास्तव में तुम ब्राह्मण पुत्र हो। ते वाचा वृद्ध सम्मता, तुम्हारी वाणी तो वृद्धों जैसी है, बूढ़ों जैसे बोल रहे हो, इतना बात बना रहे हो छोटा बालक होकर, लेकिन वास्तव में तुम बालिश्मती बालह, वास्तव में बच्चे हो, तुम्हारी बुद्धि बचकानी है, मति जो है बालिश्मती है, तुम बालिश्मती बालह, तुम वास्तव में भी बच्चे हो और तुम्हारी मति भी बच्चों की जैसी है, बोलते हो केवल बूढ़ों जैसा, क्या मति बचकानी है। स्वार्थम प्रतिबुधो जथा, जब तुमको अपने स्वार्थ का ही ज्ञान नहीं है, अपने हानि लाभ का ही पता नहीं है, तीन डेग में क्या होगा, एक कुटिया भी नहीं बनेगा, तीन डेग जमीन क्या करोगे, और वो भी कंडीशन लगा दिया कि अपने पैर से, तो तुम्हारा छोटा छोटा पैर कितना जमीन नापेगा। अगर छूट दे देता तो मैं अपने असुरों से बड़ा बड़ा डेग से नपवा देता, एक डेग में कई एकड़ नाप देते तो कुछ आश्रम बन जाता, कुटिया बन जाता। तुम तो एकदम मूर्ख हो, होश ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, तीन डेग में क्या होगा। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं
ईश्वरस्यापि यांच्या प्रकारम चोक्त्वा बलेर बंधनम प्रश्नोत्तरत्वेन तस्य गर्भाति रेकेण आधिक्षेप प्रकारम आह अहो इति त्रिभि। तीन श्लोकों में अब बतलाने जा रहे हैं कि बनवाए क्यों, मांगे क्यों, वे तो वर्णन हो गया। मांगने की कथा तो शुरू से ही हो रही है, वहां से अदिति जी की इच्छा हुई कि मेरे पुत्रों को धन मिले तपस्या की, पयोव्रत की, अपने पति के आदेश से, वो सारा मांगने के कारण है। भगवान आए, भगवान कह दिया अब कोई उपाय नहीं है बलि से लड़ने का, कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मैं कोई उपाय करूंगा, पुत्र बनकर आऊंगा। और पुत्र बनकर आए तो अब भिखमंगा बनकर चल दिए, ये सब तो कारण हो गया क्यों आए, क्यों भिक्षा मांगे, ये तो कह दिया गया। लेकिन बलि को बांधा क्यों गया, अब उसका कारण यहाँ बता रहे हैं। यही आगे के दो श्लोकों में बांधने का कारण बता रहे हैं, क्यों बांधे, देने के बाद भी क्यों बांधे गए। ते बाचो वृद्धा नाम सम्मता त्वम तु बालो बालिश मतिश्च बालिशा नाम अज्ञानमिव मतिर्जस्य। तुम्हारी बच्चों की तरह बुद्धि है, मूर्खता में बोल रहे हो, तुमको स्वार्थ का पता नहीं है। अतएव स्वार्थम प्रति यथावद अबुध, तुमको स्वार्थ का ज्ञान नहीं है। लेकिन स्वार्थम प्रत्य बुध इति च भक्ता नाम अर्थम बुद्धते न स्वार्थम। अतः वस्तु तस्तु बाल इव बालिश मति चेति छेद। स्वार्थम प्रत्य बुध इति च भक्ता नाम अर्थम बुद्धते न स्वार्थम। परिपूर्णस्य तव यत तच्च अतिरेकेण स्वार्था नाम भावादित्य अर्थ। पूर्ण को क्या चाहिए, उनको तो कुछ चाहिए नहीं, सरस्वती जी उनसे अच्छी बात बुलवा रही है, बोल रहे हैं दूसरे मूड में, लेकिन सरस्वती जी ठीक बुलवा रही है। उनको अपने स्वार्थ के विषय में क्या चिंता है, उनका क्या स्वार्थ है किसी से, वो पूर्ण है, सर्वसमर्थ है, उनको कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में अपने स्वरूप में पूर्ण रहते हैं। लेकिन अपने स्वार्थ के प्रति लापरवाह हैं, बलि महाराज कह रहे हैं, तो ठीक कह रहे हैं, वास्तव में भगवान को अपने स्वार्थ की चिंता नहीं है, वे तो अपने भक्तों के स्वार्थ के लिए चिंतित रहते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वस्तुतस्तु त्वम भक्त वात्सल्यत्वाद् भक्तार्थम एव बुद्ध से स्वार्थम प्रति न तु बुद्ध से इव इत्यबुध। वास्तव में तुम अपने स्वार्थ के लिए चिंतित नहीं रहते हो, तुमको अपने स्वार्थ की कोई चिंता नहीं है, तुम तो अपने भक्तों के लिए इतना चिंतित रहते हो कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, यह भाव है। ऐसे बलि महाराज का भाव नहीं है, लेकिन सरस्वती जी भगवान के गुणों का वर्णन कर रही हैं बलि महाराज के मुख से कि आप वास्तव में अपने प्रति कोई चिंता नहीं रखते। परिपूर्णस्य तो भक्त प्रयोजनम व्यतिरेकेण स्व प्रयोजना भावादिति। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आपका स्वार्थ तो अपने भक्तों के स्वार्थ में ही निहित है, आपका अलग से कोई स्वार्थ नहीं है, आप अपने भक्तों के लिए चिंतित रहते हैं, अपने भक्त के लिए आप क्या नहीं कर देते हैं। अभी भिखमंगा बनकर चले आए, इंद्र के लिए आप भिखमंगी करने लगे, अपने भक्त के लिए कभी रथ हाँकने लगते हैं, कभी पत्तल उठाकर फेंकने लगते हैं, तो आप भक्तों के लिए चिंतित रहते हैं, आपका कोई स्वार्थ नहीं है। देखिए बलि महाराज को बंधने का कारण आगे वाले श्लोक में है। माम बचो भी समाराध्य लोकानामेकम ईश्वरम पदत्रयम बिड़ेते यो बुद्धिमान द्वीपदासुसम। माम बचो भी समाराध्य, अरे ब्राह्मण कुमार, कोई अपने वाणी से मेरी आराधना कर लिया, मुझको खुश कर लिया, किसको, तो अपने विषय में कहते हैं लोकानामेकम ईश्वरम, संपूर्ण लोकों का एकमात्र ईश्वर मुझको, लोका नाम एक मिश्वरम, एकमात्र अगर कोई इस संसार का स्वामी है तो मैं हूं, और मुझको जो संतुष्ट कर लिया, पदत्रयम बिनेते यो बुद्धिमान दीपदासुसम, मैं एक से एक दीप देने में समर्थ हूं, सारे ब्रह्मांड का स्वामी हूं, बोलो जम्बू दीप दे दूंगा अकेले तुमको। पदत्रयम बिनेते यो, तुम तीन पग भूमि मांग कर मुझ दीपदास सुषम का अपमान कर रहे हो, जहां मैं दीप दे सकता हूं, एक देश दे सकता हूं, भारतवर्ष, बोलो जो चाहिए वो दे सकता हूं, और तुम मुझसे तीन डेग मांग रहे हो, यह बुद्धिमानी है, मूर्खता है, मेरा अपमान कर रहे हो, न पुमान माम उपब्रजे भूयो याचित मरहति तस्मात ब्रीति करिम भूमि बटो कामम प्रतीक्ष में। त्रिलोकी के स्वामी के सामने एक बार भीख मांगने के लिए जो आ जाता है, अगर फिर दूसरे के दरवाजा पर जाए तो मेरी बेइज्जती है, मेरा अपमान है। भूल कर अगर कोई भिखमंगा मेरे पास आ गया तो जीवन भर की भिखमंगी समाप्त कर देता हूँ। बाप रे बाप, गॉड इज वन, अपने को मान रहे हैं एकमात्र ईश्वर, मैं ही ईश्वर हूँ एकमात्र। एक बार कोई मेरे पास आ जाए तो उसकी वृत्ति समाप्त हो जाना चाहिए। अरे कम से कम तस्मात वृत्ति करीम भूमि, जितना से तुम्हारा वृत्ति चल सके, जीविका चल सके, उतना जमीन ले लो। तीन डेग में क्या होगा, बटो कामम प्रतीक्ष में, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सुधार लो, अब से मांगो। मांगने नहीं आया, बलि महाराज इतने उत्साह में अपने को स्वामी समझ रहे हैं और भगवान मन ही मन सोच रहे हैं तुम्हारा स्वामी तो अभी बतलाता हूँ। तो तीनों लोग के स्वामी हो कि क्या हो, कितना धरती तुम्हारे पास है। तो अब भगवान के सामने जब अपने को तीनों लोग का स्वामी कह दिए, यह बलि के द्वारा गलती हो गई, तो भगवान इस गलती के कारण बनवा दिए। कहा था मैं दूंगा, तीनों लोगों के स्वामी हो तो तीसरा डेग कहाँ देखूं, बोल। झूठ बोला, मेरा अपमान किया, तुम्हारे पास जब समर्थ नहीं था तो इस तरह से वंचना क्यों किया, मुझ ब्राह्मण को धोखा क्यों दिया, तुम धोखा दिए हो, मैं तुम्हारे जैसे धूर्त पर विश्वास कर लिया, अगर मैं पहले जानता कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुमसे मांगता ही नहीं, तो तुम असमर्थ होकर भी बहस बाने वो धूर्त कहीं का, तुमको नरक जाना पड़ेगा, बनवा दिए। तो इस तरह से यही कारण है, लोका नाम एक मिश्रम, अपने को एकमात्र ईश्वर कह रहे हैं और कह रहे हैं न पुमान माम उपब्रजे भूयो याचित मरहति तस्मात वृत्ति करीम भूमि बटो कामम प्रतीक्ष में। अतः हे ब्रह्मचारी जी, अपनी जीविका चलाने के लिए जितनी भूमि आपको चाहिए वो मांग लीजिए, तीन डेग से कुछ नहीं होगा, फिर से सुधार लीजिए अपनी मानसिकता, मांगिए मुझसे। तब भगवान उनसे किस प्रकार से बोलते हैं, अब आगे भगवान बोलने वाले हैं, इसको दूसरे सत्र में कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री राधा।